सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कण कण में अनुस्यूत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए परोपकारार्थ जनकल्याणार्थ यह दिव्य संस्था जिन महापुरुष के द्वारा संस्थापित हुई है, ऐसे प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन परंपरा का मूल शास्त्र है वेद, जिसको निगम शब्द से भी कहा जाता है और कहीं कहीं व्युत्पत्तिक शब्द आगम के द्वारा भी कहा जाता है। और समस्त आस्तिक दर्शनों का यह वेद मूलाधार है, इसलिए वेद शब्द के ऊपर जब विचार किया जाता है तो यह निर्णय होता है व्याकरण के अनुसार विद ज्ञाने से भी हो सकता है, विद सत्तायाम से भी हो सकता है, विद लाभे से भी हो सकता है। इसलिए संपूर्ण वेद के ऊपर भाष्य लिखने वाले सायण आचार्य वो लिखते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः तत् उपायश्च अनेन इति वेदः। केवल मोक्ष ही पुरुषार्थ नहीं है, अपितु धर्म अर्थ काम भी है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान जिससे होता है और इसके साधन का भी ज्ञान, उपाय का ज्ञान जिससे होता है, उसको वेद कहा जाता है। इसीलिए चतुर्विद पुरुषार्थ की प्राप्ति, प्राप्ति के साधन का ज्ञान वेद से होता है। इसलिए अपनी सनातन परंपरा के अनुसार वेद को शास्त्र कहा जाता है। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, ये शास्त्र का लक्षण होता है। एक ही प्रयोजन है सभी का, साक्षात अथवा पारंपरिक मोक्ष है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है। तो मोक्ष के लिए है वेद, और मोक्ष के जितने भी साधन होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, श्रवणादि अंतरंग साधन है ज्ञान के, कर्म उपासना बहिरंग साधन है, सबकी जानकारी, सबके स्वरूप का ज्ञान वेद से ही होता है। और इस वेद का जो अनुसरण करता है वो भी प्रामाणिक हो जाता है, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो। जितना अंश वेद सम्मत होगा उसको प्रमाण कहा जाता है। इसलिए कुमारिल भट्ट जो मीमांसा के बड़े विद्वान है, वो कहते हैं, विरोधेतु अनपेक्षम सत असति ही अनुमानम। यदि वेद से यदि विरोध हो जाएगा, वो व्यक्ति कोई भी हो, कितने बड़े महापुरुष क्यों ना हो, चाहे भगवान का अवतार क्यों ना हो, जैसे बुद्ध को भगवान कहा जाता है तो हिंदू लोग ये मानते हैं बुद्ध को भगवान, परंतु उनका कथन यदि वेद से विरुद्ध हो जाएगा तो उनका उच्चरित वाक्य प्रमाण नहीं होता है। और यदि वेद मूलक हो जाएगा तो वेद मूलकत्वे न, वेद को आधार मान करके उनके वाक्य में प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता भागवत हो, रामायण हो, इसको इसलिए प्रमाण माना जाता है कि इसका आधार वेद है, न कि भगवत परमात्मा के द्वारा उच्चरित है। ऐसा यदि माना जाएगा, भगवान के द्वारा उच्चरित होने से प्रमाण है, तो व्यभिचार हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध का वाक्य भी भगवान से उच्चरित है, तो उनके वाक्यों की प्रमाण मानो फिर। कपिल भी भगवान है, तो पुरुष को भी सत्य माना जाता है, प्रकृति और प्रकृति का कार्यों को भी सत्य माना जाता है, तो उसको ही प्रमाण मानो। तो बड़े बड़े महापुरुष, न्याय के आचार्य, वैशेषिक के आचार्य, ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनसे उच्चरित समस्त वाक्यों को प्रमाण माना जाएगा। यदि भगवान के द्वारा उच्चरित होने मात्र से प्रमाण कहने पर, इसलिए कुमारिल भट्ट ने कहा, जितना अंश भगवान शंकराचार्य भी कहीं कहीं लिखते हैं, उन महापुरुषों का हम अनादर नहीं करते हैं। कणात, गौतम आदि का बहुत आदर करते हैं, परंतु जितना वेद से विरुद्ध होता है उसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं। इसलिए गीता वाक्यम प्रमाणम श्रुति मूलकत्वात्, न कि भागवत उच्चरितत्वात्। तो हमारा ये कहना है कि जो ग्रंथ चतुर्विद पुरुषार्थ का ज्ञान कराता हो और समस्त साधनों का ज्ञान कराता हो, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, वो तो केवल वेद में ही मिलता है, अन्यत्र मुख्य रूप से नहीं मिलता है। मुख्य रूप से तो वेद ही मिलता है, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन, और गौण रूप से, सारांश रूप से गीता में भी तीनों का प्रतिपादन है, कर्म, उपासना और ज्ञान। इसलिए गीता को भी शास्त्र कह दिया जाता है, इदम शास्त्रम पुण्यम, इदम गीता शास्त्रम पुण्यम कहा जाता है ना महात्म्य में। तो प्रथम छह अध्याय में कर्मों का प्रतिपादन है गीता में, सप्तम अध्याय से बारहवां अध्याय पर्यंत भक्ति उपासना का है मुख्य रूप से, त्रयोदश अध्याय से अंतिम तक ज्ञान का है मुख्य रूप से। इसलिए गीता को भी वेद की तरह गौण रूप से, उपचार रूप से शास्त्र कहा जाता है। इसलिए हमारा मुख्य आधार है वेद सनातन परंपरा में, और जहां पर जिस ग्रंथ में केवल एक का प्रतिपादन कर दिया हो, कर्म का हो, उपासना का हो, अथवा ज्ञान का हो, तो उसको प्रकरण कहा जाता है। प्रकरण जो आप लोग विचार कर रहे हैं स्वाध्याय में पंचदशी, तो पंचदशी शास्त्र नहीं है, प्रकरण है। वहां पर शुद्ध परमात्मा का वेदांत प्रतिपाद्य जो विषय है, जीव ब्रह्म का एकत्व, जिसके ज्ञान से और ज्ञान की निवृत्ति होती है उसका प्रतिपादन है। तो ना जीव के स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ना परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अपितु दोनों का जो एकत्व है शुद्ध लक्ष्यार्थ, तो उसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपकी पंचदशी का सारांश है। तो मोक्ष का जो साक्षात साधन, अज्ञान निवर्तक जो साक्षात साधन ज्ञान है, उसका प्रतिपादन पंचदशीकार ने किया, गुरु और चेले मिलकर के किए, आप लोग जानते ही हैं। इसलिए पंचदशी को प्रकरण कहा जाएगा, मीमांसा आदि को भी प्रकरण कहा जाएगा, क्योंकि कर्म का प्रतिपादन है। भक्ति आदि ग्रंथ को, नारद भक्ति सूत्र आदि, इसको भी प्रकरण कहा जाएगा। तो अपनी सनातन परंपरा के अनुसार वेद हो गया शास्त्रात्मक ग्रंथ है, और इसी का समस्त महापुरुष जितने भी आस्तिक दर्शन के हैं आचार्य, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सभी का आधार एक वेद है। और वेद सार्वभौम ग्रंथ है, इसमें सबका अधिकार है, अधिकारी के रूप से, अधिकारी के रूप से वेद में सबका अधिकार है। किसी का कर्म में है, किसी का उपासना में है, और किसी का ज्ञान में भी हो सकता है। परंतु ज्ञान में अधिकार है, सबका नहीं हो सकता है। देसी घी को पचाने के लिए सबका अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञान को पचाने के लिए सबका अधिकार नहीं, सामर्थ्य नहीं हो सकती है। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है, सूक्ष्मता है बुद्धि में, तो आप ब्रह्म का प्रतिपादन तो कर सकते हैं बढ़िया ढंग से, व्याख्यान तो कर सकते हैं, ब्रह्मवादी हो सकते हैं आप, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते अधिकार के बिना। इसलिए निष्काम कर्म के द्वारा जिसने ज्ञान को धारण करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया है, बुद्धि के एकाग्र को, एकाग्रता को जिसने प्राप्त नहीं किया है, और ये जो अनादि अनिर्वचनीय माया है उसको दूर करने की सामर्थ्य ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए यहां पर प्रथम अध्याय में कहा जमराज जी ने, नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना श्रुति न यमे देश वृणुते, कहा मतलब परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर प्राप्त नहीं है उसको माया को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं प्राप्त हो सकती है। यह है सच्चाई। इसलिए साधक का साधकत्व इसी में है। शास्त्र जो सच्चाई को बताता है उसको समझना, उसको स्वीकार करना है। केवल समझने मात्र से साधकत्व नहीं आता है। समझते तो नास्तिक भी समझते हैं शास्त्र को, लेकिन समझ करके अपनाना सच्चाई को, यही साधक का साधकत्व है। जैसे नारद में साधकत्व आया, तुम क्या पढ़े हो, सब बता दिया सनत कुमार जी से, हम इतना पढ़े इतना पढ़े, फिर भी हम जीवन भर दुखी है, यही साधक का साधकत्व है। गुरु पूछता है तुमको क्या आता है, सब बता देना है, यही साधक का साधकत्व है। तो शास्त्र जितना प्रतिपादन करता है उसको स्वीकार कर लेना, यही साधक का साधकत्व है। इसलिए कर्म और उपासना के द्वारा जिसने ज्ञान को पचाने की शक्ति को प्राप्त कर लिया, वही साधक का साधकत्व है। और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो साधक नहीं होता है, वो तो स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसको साधक कहा जाता है। तो इस बार हम लोग विचार करने जा रहे हैं, विचार करने का आधार ये कठोपनिषद है। तो इसमें द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अपने गिरीश भाई जी ने बताए कि प्रथम अध्याय तो बहुत लोग सुनाते हैं, सुनते आ रहे हैं, इसलिए द्वितीय अध्याय से विचार करने का प्रयत्न करते हैं। तो यह कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की है। और कट शाखा के अंतर्गत है। सभी उपनिषद में एक ही प्रतिपाद्य होता है और एक ही विषय होता है, जीव ब्रह्म का एकत्व है। और सभी उपनिषद में जो अनुबंध में आता है अधिकारी, अनुबंध तो आप लोग जानते ही है, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, तो अधिकारी वही होता है जिसने कर्म और उपासना के द्वारा विवेक आदि को प्राप्त कर लिया हो, जिसको साधन चतुष्टय कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसने साधन चतुष्टय को प्राप्त नहीं किया है और वेदांत का श्रवण करता हो, उनका क्या होगा, उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, वे ये बहुत शंका आती है, संशय भी आता है लोगों के मन में। तो जिसने प्राप्त कर लिया साधन चतुष्ट संपत्ति को, उनको तो ज्ञान होगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। परंतु जिसने प्राप्त नहीं किया हो फिर भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता हो, उनका भी कल्याण हो सकता है, होता है। लेकिन कल्याण के हेतु क्या बताया, श्रद्धा, ये पंचदशी में सुनते ना, इसी को ही जिसने आधार बना लिया, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, ये जो बताया ब्रह्माभ्यास पंचदशी में, पंचदशी जी ऐसा एक ग्रंथ है, इसका बहुत चिंतन करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया पंचदशी को आरंभ करके। तो साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त ना भी हो किसी को, परंतु श्रद्धा पूर्वक ही सुनता हो तो पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन सा पुण्य? पुण्य भी दो प्रकार का होता है। तीन प्रकार का भी कह सकते हैं। एक तो शुक्ला है, जिसमें पाप मिश्रित ना हो, उसको शुक्ला कहा जाएगा। और जिसमें थोड़ा मिश्रित हो पाप, उसको क्या कहेंगे? शुक्ला कृष्ण कहा जाता है। योग दर्शन में विचार आता है, दो हो गए, एक शुक्ला हुआ और एक शुक्ल कृष्ण हुआ। तीसरा एक होता है, उसको योग भाष्यकार कहते हैं भगवान व्यास जी, अशुक्ल अकृष्ण, है ना? शुक्ल भी नहीं है और कृष्ण भी नहीं है। ये उत्तम अधिकारी को प्राप्त होता है। जो वेदांत श्रवण को कर्तव्य बुद्धि से श्रवण करता हो, मुझे सुनना चाहिए, इससे क्या होता है ये नहीं विचार करता है, है ना? जैसे संध्या वंदन कोई करता हो, गुरु ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया कि तुम संध्या वंदन करो, अब बालक प्रश्न नहीं करता हो, इससे क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा होने वाला वेदांत श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अशुक्ल अकृष्ण, शुक्ल भी नहीं है कृष्ण भी नहीं है। ऐसे कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त होकर के यदि कोई वेदांत का श्रवण करता हो तो अशुक्ल कृष्ण की प्राप्ति होती है, और वही बुद्धि शुद्धि का हेतु होता है। इसके बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती है। चित्त की शुद्धि नहीं है, वेदांत का श्रवण करता हो, वेदांत का व्याख्यान करता हो, तो ब्रह्मवादी तो हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता है। उसी की संज्ञा लोग विद्वान तो कह सकते हैं, विद्वान की संज्ञा तो हो सकती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी उसको नहीं कही जाएगी। यह है सच्चाई। देखो, इसलिए हमारा जो सनातन परंपरा में है भेद, सबसे पहले कर्म का उपदेश करता है। कर्म में प्रवृत्त कराता है। इसलिए यहां पर नचिकेता और यमराज का जो उपाख्यान है, इस उपाख्यान के द्वारा ब्रह्म विद्या की स्तुति की जाती है। पहले प्रथम अध्याय का आप लोगों को सारांश बताते हैं। देखिए, हमारा एक विचार है, अपना अनुभव है कि जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन करते हैं अथवा कराते हैं, उसे कुछ प्राप्त होना चाहिए, सुनने वाले को भी और अपने को भी होना चाहिए। इसलिए हम कथा कहानी मनोरंजन का आधार नहीं लेते हैं, ना आता है ना प्रयत्न भी करते हैं। तो इसीलिए विचार करना चाहिए इसके आधार पर कुछ प्राप्त हो जावे मनुष्य जन्म में। तो सबसे पहले जो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए यहां पर उपाख्यान है, नचिकेता और यमराज। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति इसलिए की जा रही है कि कैसे व्यक्ति को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, एक बात हो गई। नचिकेता को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई कि नचिकेता का हृदय किस प्रकार का था, और उस प्रकार का हृदय हमारे पास है कि नहीं है, उसका अन्वेषण करना चाहिए, एक बात हो गई। और दूसरी बात, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को भी यहां पर दिखा जा रहा है। वो प्रतिबंधक अपने में है कि नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए ये उपाख्यान है यमराज और नचिकेता का। और तीसरी बात यह है कि सबसे पहले वेद में उपदेश है कर्म का, कर्म किस प्रकार का होना चाहिए इस जीवन में, जो प्रथम श्रेणी है मनुष्य की, प्रथम श्रेणी है कर्म। लेकिन किस भावना से अपने पैर को आगे बढ़ाना है सीढ़ी में, जिससे कि ऊपर चढ़ सकते हैं छत पर। छत पर है ज्ञान, वो ज्ञान तक एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी से जा सकते हैं। और पैर यदि डगमगा गया हो ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे कि नचिकेता के पिता उद्दालक ने किया, कर्म तो किया शास्त्रीय कर्म, लेकिन उद्देश्य उनका गलत था। शास्त्रीय कर्म में प्रवृत्ति तो हुई लेकिन उनका उद्देश्य गलत हुआ, इसलिए उस कर्म के द्वारा जो वास्तविक फल मिलने वाला है वो फल नहीं मिला। वो केवल उन्हीं के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो तो निमित्त है, इस सब के लिए है। वेद सार्वभौम ग्रंथ है, सबके लिए होता है अधिकारी भेद से। इसलिए प्रवृत्ति कर्म में तीन प्रकार की होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, वेदांत कोई कहानी नहीं है। केवल वेदांत क्यों लेते हैं, संपूर्ण वेद ले लीजिए, कर्म उपासना और ज्ञान। जहां पर कोई आख्यायिका भी हो, कहानी सही भी आख्यायिका है, तो आख्यायिका का उद्देश्य आख्यायिका में नहीं होता है अपितु अन्यत्र होता है। उसका रहस्य आचार्य महापुरुष लोग बताते हैं। क्यों? अज्ञात ज्ञापकत्वेन शास्त्रत्वम्। अज्ञात का ज्ञापन करेगा तो शास्त्र कहा जाएगा, ज्ञात का ज्ञापन करेगा तो अनुवादक हो गया, है ना। तो अनुवादक को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार जो आख्यायिका है, सृष्टि का कथन आदि होता है, ये तो ज्ञात है, तो ज्ञात का ज्ञापन करेगा तो शास्त्र नहीं हुआ, वो अनुवादक हो गया। इसीलिए आख्यायिका के रहस्य को समझना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे, तो कर्म में प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है। तो एक प्रवृत्ति होती है मोह प्रवृत्ति, मोह पूर्वक प्रवृत्ति, मोह निमित्तक प्रवृत्ति कहेंगे उसको। जैसे कि देखिए आप, हमेशा ये हम कह रहे थे कि वेद वेदांत को अपने जीवन में निरीक्षण करना चाहिए कि वास्तविकता है कि नहीं है। नहीं तो जीवन भर सुनते रहेंगे, तो ऐसे ही सुनते आ रहे हैं अनेक जन्मों से, तो क्या मिला। तो प्रथम प्रवृत्ति है मोह प्रवृत्ति। जैसे कि आप लोग देखिए, कोई पक्षी है तो छोटे छोटे जो पक्षी होती है नवजात, उनके लिए दाना लाती है बहुत दूर दूर से, तो चुन चुन कर लाती है और उनके मुंह में दाना छोड़ती है। पशु भी स्तनपान कराती है, जानवर कराती है अपने बच्चे को। वो जो बहुत दूर दूर से दाना चारा ढूंढकर लाती है, मुंह में दाना छोड़ती है, वो जो प्रवृत्ति हुई कौन सी प्रवृत्ति हुई, विचार करके देखिए, उसको मोह प्रवृत्ति कही जाएगी। स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं है वो। और हम लोग जो मनुष्य है, अपने बच्चे की प्रवृत्ति, बच्चे के प्रति प्रवृत्ति जो हो रही है, ये स्वार्थ प्रवृत्ति है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, है ना। लेकिन ये मोह प्रवृत्ति नहीं, स्वार्थ प्रवृत्ति है। लेकिन पक्षी जो दाना छोड़ रही है, इसको स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं कहेंगे। पशु की प्रवृत्ति स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं, इसीलिए क्योंकि उनको तो मालूम है, उनको मालूम है पक्षी जब बड़ी हो जाएगी मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन माता पिता को तो मालूम नहीं है सर। माता पिता को ये ज्ञान है कि बड़ा जब हो जाएगा पुत्र मेरी सेवा करेगा। आप लोग विचार करके देखिए, कौन सी प्रवृत्ति श्रेष्ठ है, मोह प्रवृत्ति श्रेष्ठ है कि स्वार्थ प्रवृत्ति श्रेष्ठ है। मोह प्रवृत्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे पहले हमने वो दृष्टांत दिया, मोह प्रवृत्ति को दिया। स्वार्थ नहीं है पक्षी का, भले ही मोह हो, है ना। और मनुष्य में स्वार्थ प्रवृत्ति है, अब मोह को भी जोड़ भी सकते हैं, मोह और स्वार्थ मिला करके प्रवृत्ति होती है। अब पक्षी में केवल मोह प्रवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति नहीं है। तो एक विशेषण ज्यादा हो गया ना मनुष्य में, और पशु पक्षी में एक विशेषण कम हो गया, ये ज्यादा प्रतिबंधक कौन हुआ। तो व्यक्ति में जितना विशेषण होता है उतना प्रतिबंधक होता है, है ना, उतना मान सम्मान मिलता है। तो इसलिए सबसे पहली प्रवृत्ति को हमने बताई मोह प्रवृत्ति। तो पशु की प्रवृत्ति मोह प्रवृत्ति है, और मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थ प्रवृत्ति है। तो विचार करना चाहिए, उसी प्रकार की यदि प्रवृत्ति हो पशु की तरह, मनुष्य में भी, दोनों में क्या अंतर रहा फिर? यदि सबसे पहले शास्त्र का ये कर्तव्य होता है महापुरुषों का कि पशु प्रवृत्ति से छोड़ करके, स्वार्थ प्रवृत्ति को छोड़ करके एक निष्काम प्रवृत्ति हो, मोह और स्वार्थ को छोड़ करके, इसको कहते हैं निष्काम प्रवृत्ति। तो कोई पशु हो, उसकी प्रवृत्ति होती है चारा दिखा दीजिए, पशु को बुलाना हो आप चारा दिखा दीजिए, तो चारा को देख करके पशु आ जाता आपके पीछे पीछे। और चारा से भी यदि नहीं आता हो तो डंडा दिखा दीजिए, भय दिखा दीजिए, तो डंडा दिखा करके आप पशु को ले सकते हैं आप। तो इसी प्रकार हमको कोई दिखा देवे, लोभ दिखा देवे, चारा मतलब लोभ, ये समझ लो, चारा मतलब लोभ। इसी प्रकार पैसे का कोई लोभ दिखा देवे तो हम झूठ बोल देते हैं, और पैसे धन संपत्ति से यदि प्रभावित नहीं हुआ तो भय दिखा दीजिए, तुम्हारे पुत्र को ले जाएंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो अशास्त्रीय कर्म भी कर लेता है। तो पशु की प्रवृत्ति जैसी हो रही है चारा और डंडा से, उसी प्रकार यदि मनुष्य की प्रवृत्ति हो चारा और डंडा से, लोभ और भय, ये हो गया चारा और डंडा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए वेद का प्रथम कर्तव्य ये होता है, पशु प्रवृत्ति से एक ऊपर प्रवृत्ति होती है निष्काम प्रवृत्ति। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से बार बार, युद्ध तो करना ही है जीवन भर, प्रातःकाल से लेकर के शयन पर्यंत सब युद्ध ही है। सबसे पहले उठते हैं तो युद्ध कौन सा होता है, बाथरूम जाइए, स्नान करिए, जाना ही पड़ता है कि नहीं, ना चाहने पर भी जाना पड़ता है। तो प्रवृत्ति को तो हम छोड़ नहीं सकते, अज्ञानी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकता है, इसीलिए पशु प्रवृत्ति से उठ करके निष्काम प्रवृत्ति हो। माम अनुस्मर युद्ध चका भगवान गीता में, निष्काम प्रवृत्ति से प्रवृत्त होकर के मुझे नहीं भूलना है, इसलिए परमात्मा को भूल जाना सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए निरंतर कर्म उपासना में प्रवृत्त होकर के परमात्मा का स्मरण करके यदि हम आगे बढ़े तो ये प्रथम सीढ़ी हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहां पर देखिए, नचिकेता के पिता उद्दालक ने यज्ञ किया, शास्त्रीय कर्म तो किया, लेकिन उद्देश्य है कामना, कामना से प्रेरित होकर किया, पुत्र के प्रति मोह था, इसलिए अच्छे अच्छे गाय को रख लिया अपने पुत्र के लिए, जो अनावश्यक गाय है उनको दान के रूप से दिया, ये हो गया प्रतिबंधक। देखो तो ऐसा प्रतिबंधक अपने जीवन में ना हो, इस यहां पर शिक्षा है। और जब बार बार पूछा नचिकेता ने, सर्वस्व दान देना चाहिए यज्ञ में, मैं भी तो आपका धन हूं, मैं भी आपकी संपत्ति हूं, मुझे आप किसके लिए दे रहे हैं, तो बार बार जब पूछा मृत्यु के लिए दे दिया, जमराज के लिए दे दिया, ये हो गया प्रतिबंधक दूसरा हो गया, भयावत भय हो गया, ये क्रोध आ गया, यदि कोई भी शास्त्रीय अनुष्ठान करते हैं ऐसे तो क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए जीवन भर, परंतु कम से कम अनुष्ठान के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान के समय अनुष्ठान को आप शास्त्रीय पद्धति से क्यों ना करते हैं, यदि उसमें क्रोध आ गया तो अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है, ये व्रत होता है, ये सारा का सारा व्रत ही है, ये यम नियम आसन जितने भी है ना ये सब व्रत है। जैसे अनुष्ठान में क्रोध नहीं करना ये व्रत है, इसी प्रकार ये भी व्रत है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है विवेक आदि को नहीं छोड़ सकते, जब तक ज्ञान की सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते तब तक कर्म उपासना को आप छोड़ नहीं सकते। श्रवण मनन निध्यासन यद्यपि ज्ञान के साधन है, परंतु जब तक आप श्रवण आदि में परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक कर्म उपासना को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कर्म उपासना भी एक व्रत की तरह है, ये दूसरी शिक्षा है। तो अनुष्ठान के समय क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जब जमराज को भेज दिया, जमराज के पास नचिकेता को, तब नचिकेता चले गए और अधिकारी का यही अधिकार, साधक का ये साधकत्व कि किसी के ऊपर दोष नहीं देखना है। पिता भेज दिया जमराज के पास नचिकेता को, क्रोध आया पिताजी को, फिर भी क्रोध रूपी दोष को नहीं देखता है ये नचिकेता, और अन्वेषण यह करता है किस हेतु से मेरे ऊपर पिताजी ने क्रोध किया, कारण क्या है, और कारण को अन्वेषण करता है अपने में, पिताजी के क्रोध को नहीं देख रहा है। इसलिए जब तीन बार मांगता है जमराज से तो प्रथम बार क्या मांगता है, पितृ संतोष। ये देखिए यही साधक का साधकत्व है, जिसने क्रोध किया मृत्यु के पास भेज दिया उन्हीं के लिए सबसे वरदान मांगता है पितृ संतोष। तो प्रथम बार के रूप से पितृ संतोष को मांगा और दो बार रह गए। तो इतना छोटा सा बालक है अपने कर्तव्य को समझता है, कर्तव्य, इसलिए कर्तव्य का उपदेश सबसे पहले दिया जाता है अपने सनातन परंपरा में कि मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव, ये कहा जाता है कि माता के लिए क्या कर्तव्य है, पिता के लिए क्या कर्तव्य है, समाज के लिए क्या कर्तव्य है, और अंतिम में एक कर्तव्य है, अंतिम कर्तव्य क्या है, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, वो भी करना है। इसलिए सबसे पहले कर्तव्य एक मांगता है पिता के लिए। तो प्रथम बार के रूप से पितृ संतोष को मांगा और दो बार रह गए। तो कर्तव्य परायण है तो विचार करता है, परीक्षण करता है कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो संसार का परीक्षण नहीं करते हैं, अभ्युदय चाहने वाले हैं, कामना से प्रेरित होने वाले हैं, कामना उन्हीं को होती है जो जगत का परीक्षण नहीं करता है, स्वर्ग चाहता है, ब्रह्मलोक चाहता है, पुत्र चाहता है, धन चाहता है, ये संसार का परीक्षण नहीं करने वाले हैं। तो एक प्रकार के व्यक्ति हो गए, तो उन्हीं के लिए मांगा अग्नि विद्या को परीक्षण न करने वाले के लिए, कम से कम कामना होने पर भी शास्त्रीय कर्म तो करे, कर्म का अनुष्ठान तो करे, तो कामना से प्रेरित होकर के भी यदि कोई सकाम कर्म करे, वही सकाम कर्म निष्काम हो जाता है। इसलिए अग्निहोत्र नित्य कर्म भी होता है और सकाम कर्म भी होता है, दोनों होता है। चित्त शुद्धि के लिए ज्यादा अधिक भूमिका होती है नित्य कर्म की। और असंध्याम उपासित अग्निहोत्रम जुहुयात, नहीं करने से प्रत्यवाय होता है, करने से चित्त की शुद्धि होती है, ये हो गया नित्य कर्म। इसकी ज्यादा भूमिका होती है चित्त की शुद्धि में। परंतु इसको भी करते करते जब निष्कामता आ जाती है, ये भी नित्य कर्म हो जाएगा, समझ में ना। अग्निहोत्र, इसलिए अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, और निष्कामता आ जावे चित्त की शुद्धि भी होती है, दोनों होती है। इसी प्रकार वेदांत का श्रवण करते हैं, कामना से करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति भी होती है, और निष्कामता से करते हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं है, चित्त की शुद्धि हो जाएगी, और साधन चतुष्टय संपत्ति है तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसमें किसी प्रकार कहना नहीं है। तो जो संसार का परीक्षण नहीं करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए नचिकेता ने अग्नि विद्या के रूप से द्वितीय वर के रूप से मांगा, और तीसरा वर जो है, जैसे मैं नचिकेता हूं, संसार का परीक्षण करता हूं, जमराज के द्वारा दिया गया प्रलोभन से प्रलुब्ध नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, तो मेरी तरह और भी बहुत सारे हैं परीक्षण करने वाले, ऐसे व्यक्ति के लिए अग्नि विद्या नहीं है, फिर ब्रह्म विद्या है, जिसकी प्रशंसा होता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है, यदि है वो विशिष्ट है कि सब निर्विशेष है, जीव से भिन्न है कि अभिन्न है, उसका स्वरूप क्या है, उसको मांगा तृतीय वर्ग के रूप से। फिर इसका विचार करते हैं कल से द्वितीय अध्याय से। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।